ओम शांति। तो हम सब जानते हैं कि जनवरी मास हमें अपने आदि पिता आदि देव फर्स्ट एंजल जो है, फाउंडिंग फादर जो है, ब्रह्मा बाबा की बहुत याद दिलाते। तो क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा की त्याग, तपस्या, साधना ऐसी थी जो न सिर्फ हमें लेकिन दुनिया भर की सब आत्माओं को प्रेरणा भी देती है। इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत हमारे फाउंडिंग फादर थे। तो हर कदम जैसे ब्रह्मा बाबा रियलाइजेशन, हर कदम में उन्नति, हर कदम में विश्व सेवा, विश्व कल्याण का ही कदम रखा। तो उनको फॉलो करते हमारी दादियां हैं, तो उनको फॉलो करते हम सब बाबा के बच्चे हैं। तो फर्स्ट एंजल आदि देव ब्रह्मा बाबा, तो कौन से पहले कदम उठाए जो आदि देव बने, जो फाउंडिंग फादर बने। तो जिस कदम पर कदम रखते हुए हम भी संपूर्णता की ओर जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्पष्ट करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर सचिन भाई आए हुए हैं। पहले सभी स्पार्कलर्स की ओर से हम तहे दिल से आपका बहुत 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 स्वागत करते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप, तो हम मुरली में पढ़ते हैं कि ब्राह्मण चलता हुआ अचानक फंस गया है, शिव बाबा प्रवेश हो गए और इनका जीवन ही बदल गया। तो ये शायद ब्रह्मा बाबा का जीवन में पहला कदम होगा जो एक क्रांति लाने वाली थी। तो ऐसे ही हम सचिन भाई के अनुभव में सुने हैं, तो वो डायरेक्ट डायमंड हॉल पहुंचे और बाप दादा से दृष्टि ली और तब से बाबा के बच्चे बने। तो ये सचिन भाई जी का पहला कदम था। तो कदम पर कदम रखते हुए वो बहुत ही अभी आगे बढ़े हैं पुरुषार्थ में, योग में, और खास करके तो वो जो प्रेरणादायक क्लासेस और फिर कुछ ऐसी प्रेरणा की बातें सुनाते वो मन को छू लेता है। तो सचिन भाई जी मेडिकल साइंस में भी बहुत अच्छा अचीवर रहे हैं और उसके बाद अभी हमारे बाबा के घर में जो ग्लोबल हॉस्पिटल बना है, तो वहाँ पर अपने एज फिजिशियन बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं एज डबल डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है लौकिक में कहते हैं कि बहुत बिजी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं सचिन भाई जी के जीवन में कितना अच्छा बैलेंस चल रहा है। तो डॉक्टर भी हैं और फिर बाबा की ये जो पुरुषार्थी जीवन है उसमें भी समय दे करके, बहुतों को प्रेरणा दे करके आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो देश में हम सब जगह देखते हैं कि यहाँ पर भट्टी है, सचिन भाई आए थे तो वहाँ पर क्लासेस है, पब्लिक प्रोग्राम्स भी, और फिर बहुत भट्टियाँ कराते हैं, बहुत बाबा के बच्चों को प्रेरणा देकर दिल को छू लेते हैं। तो खास करके इनकी जो मैंने विशेषता देखी, बहुत कम समय में इन्होंने बाबा को बहुत अच्छा पहचाना है, बाबा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है और कम समय में उनका पुरुषार्थी जीवन जो है बहुत ही आगे बढ़ा। जैसे बाबा, हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा, सेकेंड में उनको रियलाइज हुआ कि मुझे विश्व परिवर्तन कार्य में आगे बढ़ना है, मैं फाउंडर हूँ, मैं एक तना में बैठा हूँ। सेकेंड में रियलाइज हुआ और बाबा को लगा कि ये मेरा जीवन ही भगवान के लिए है। तो ऐसे ही हम देखते हैं डॉक्टर सचिन भाई जी भी एक सेकेंड की दृष्टि बाबा की और अपना जीवन ही समर्पित कर दिए हैं। तो ऐसे भाई जी का हम फिर से स्वागत करते हुए, तो हम आज के जो टॉपिक है फर्स्ट एंजल आदि देव ब्रह्मा बाबा, तो उनसे हम सुनेंगे और फिर हम ये भी चाहते हैं कि भाई जी कुछ कमेंट्री लिखे हैं और उसका प्रिंट आउट अभी 15-20 मिनट में आप सबको दिया जाएगा। तो आप सबके पास पेन है? सबके पास? जिनके पास नहीं है कृपया वहां पर आप बोल दीजिए, वहां कीर्ति भाई होंगे, उनसे ले लीजिए, लेकिन आवश्यक है आप पेन रखे, क्योंकि कमेंट्री भाई सब सुनाते, आपको कुछ वर्क भी करना पड़ेगा। तो जिनके पास नहीं है कृपया हाथ खड़ा करें। 10-15 लोग हैं ऐसे। ओके, तो आपको दिया जाएगा या एक जा करके बाहर से ले लीजिए। तो अभी हम आदरणीय सचिन भाई जी से सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच।
ओम शांति। एक जैन गुरु के उद्यान में, बगीचे में एक बार वहां जो उगाए हुए कद्दू थे, उन कद्दूओं की आपस में लड़ाई हो गई। उन कद्दूओं में दो ग्रुप हो गए। बहुत ही घमसान लड़ाई हो गई। और जब उस गुरु को यह पता चला तो वो जैन गुरु बगीचे में पहुंचे तो देखा कि सारे कद्दू एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो जैन गुरु ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु वो सुनने को भी तैयार नहीं थे। कुछ का कहना था, या तो दूसरे कद्दू रहेंगे या तो हम रहेंगे। इस बगीचे से, इस गार्डन से इन कद्दूओं को बाहर निकालो। तो जैन गुरु ने बहुत समझाया, परंतु कद्दू अपनी जिद पर अड़े थे। तो जैन गुरु ने कहा, कम से कम इतना तो कर सकते हो कि मैं कुछ यदि आपको दिखाऊं तो वो दृश्य देखकर तुम वैसा करो जैसा तुमको दिखता है। और वो दिखाता है कि वो जो बौद्ध आश्रम था जहां वो गुरु रहता था और जिसके पीछे ये उद्यान था, वहां पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु ध्यान करने बैठे थे। तो वो कद्दूओं को दिखाता है, देखो उस ओर, क्योंकि वो जो बौद्ध भिक्षु थे उनके बाल तो होते नहीं। तो गुरु ने कहा, देखो ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये तुम्हारी ही तरह कद्दू बैठे हैं वहां पर। वो तो योग में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, जिसको वो झाजेन कहते हैं। झाजेन अर्थात केवल बैठना, कुछ न करना। तो कद्दूओं को गुरु ने कहा, कम से कम वो जो तुम्हारे जो दूसरे भाई कद्दू है उस और मंदिर के अंदर बैठे हुए, कम से कम उनके जैसा तुम बैठ सकते हो। देखो वो भी तो कद्दू ही है। तो वो सारे कद्दू देखते, हाँ बड़े बड़े कद्दू है, सिर कद्दू जैसा दिखाई दे रहा है। तो वो लोग कहते हाँ, और वो सारे कद्दू शांत बैठ जाते हैं सिद्धासन ध्यान मुद्रा में, जैसे वो मंदिर के कद्दू अर्थात बौद्ध भिक्षु बैठे थे। और जैसे ही बैठते हैं, धीरे 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 शांत हो जाते हैं। उनके मन में जो क्रोध था, जो आवेग था, जो संघर्ष था, जो लड़ाई थी, वो एकदम शांत हो जाते हैं। फिर गुरु कहता है, अब अपने दोनों हाथ अपने सिर पर ले जाओ। तो सारे जो कद्दू जो लड़ रहे थे और अब शांत हो गए थे, वो सभी अपने हाथ सिर पर ले जाते हैं अपने। दोनों हाथ, और जैसे ही हाथ ऊपर ले जाते हैं पाते हैं कि एक बेल है, और वो एक ही बेल है जो सारे कद्दूओं को जोड़े हुए है। और अचानक प्रतीति होती है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हम तो सब एक ही है। तो वो ज़ेन गुरु कहता है, ये जो हुआ क्यों हुआ, क्यों इतने शांत हो गए जैसे ही दूसरे जो शांत थे, जो योगी बैठे थे, जो भिक्षु बैठे थे, उनको केवल देखा, उनकी केवल नकल की, अनुकरण किया, और जैसे ही जैसे बौद्ध भिक्षु बैठे थे, जैसे ही ये कद्दू बैठे, तो ये भी क्या हो गए, शांत हो गए। भगवान के महावाक्य है, तुम्हें केवल वैसे बैठना है, वैसे चलना है, वैसे उठना है, वो तुम्हारी दृष्टि हो, वो तुम्हारी वृत्ति हो, वो तुम्हारे संकल्प हो, वो तुम्हारे बोल हो, जो ब्रह्मा बाप के थे। तुम केवल वैसे बैठ जाओ, तुम केवल वैसा ही सब कुछ करो, तो क्या हो जाओगे, तुम भी शांत हो जाओगे। और जैसे ही शांत हो जाओगे, आंतरिक द्वंद्व, संघर्ष, कलह, कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही हाथ ऊपर ले जाओगे, पाओगे एक ही तो बेल है, एक ही तो स्नेह का सूत्र है, एक ही तो धागा है जो हमें बांधे हुए है, और एक नव प्रभात होगा हृदय में। तो आज हम एक यात्रा की चर्चा करेंगे, जैसे कि टॉपिक है द जर्नी ऑफ द फर्स्ट एंजल। किसकी यात्रा, फर्स्ट एंजल की यात्रा, फर्स्ट एंजल की जर्नी। ज्ञान योग से संबंधित विषय पर क्लास कराना हमें लगता है शायद आसान है, उससे थोड़ा कठिन है किसी व्यक्ति के जीवन पर बोलना। संसार में द्वापर से अब तक असंख्य महान आत्माएं हुई है, वैज्ञानिक, दार्शनिक, विचारक, फिलोसोफर्स, धर्मगुरु, उपदेशक, सन्यासी, उदासी, शंकराचार्य, इमाम, पैगंबर, पयंबर, मैसेंजर्स, तीर्थंकर, अवतार, इन सब पर बोला जा सकता है, परंतु थोड़ा कठिन है। परंतु इन सबसे भी कठिन कार्य है उस व्यक्ति के ऊपर बोलना जो कि इस सृष्टि का आदि पिता है। जो कि सागर समान है, जो कि स्वयं भगवान समान बन गया है, इसलिए हम हमेशा से कतराते हैं बाबा पर बोलने के लिए, क्योंकि व्यक्तित्व इतना ऊंचा है, इतना महान है, कि हम कैसे उनके ऊपर बोल पाएंगे, कैसे उनको समझ पाएंगे, क्या हमने पूरा उसको समझा है, वैसे ही समझा है जैसे भगवान ने उसे जाना, भगवान ने उसे समझा। मुरलियों में आता है तुम्हें श्रीमत पर चलना है, आज सुबह भी कहा था सबकी मत एकत्र है, इसी में क्या है, सैकरीन है। एक यात्री अफ्रीका के जंगल से गुजरता था, उसे पूरे अफ्रीका के जंगलों की यात्रा करनी थी, इसलिए वह एक दुकान में गया और कहा कि मुझे एक दिशा सूचक यंत्र दो, कंपास। तो दुकानदार ने वो यंत्र दिया। उस यंत्र में ऊपर तो था दिशा, जिसको हम जीपीएस आज की भाषा में, उस तरह का वो यंत्र था, पर यंत्र के पीछे एक आईना था। तो वो यात्री पूछता है, ये आईना किस लिए है? ये कोई श्रृंगार का साधन तो है नहीं कि जिसके पीछे आईना हो, ये तो कंपास है, ये तो वो दिशा सूचक यंत्र है। तो वो दुकानदार कहता है, ऊपर से जो दिख रहा है ये जो यंत्र है जो तुमको दिशा दिखाएगा, यदि तुम भटक गए जंगलों में तो ऊपर का यंत्र कंपास तुमको दिशा दिखाएगा, और पीछे जो आईना है वो ये दिखाएगा कि भटक कौन गया है। जो वो कंपास है वो है श्रीमत, और वो जो आईना है वो है ब्रह्मा का जीवन। श्रीमत ये बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। परंतु कभी कभी हम यही भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। वो मैं कौन हूं ये दिखा देखने का आईना ब्रह्मा का जीवन है। तो आज हम बाबा के जीवन की जो यात्रा है, लंबी यात्रा, ब्रह्मा से संपूर्ण ब्रह्मा तक की यात्रा, वो कौन से अध्याय थे, वो कौन सी बातें थी, वो कौन सी घटनाएं थी जिससे ब्रह्मा, दादा लेखराज नहीं, ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मा बना। तो ऐसी हम लगभग 18 यात्राएं देखेंगे, 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नीज, ऐसी 18 यात्रा जो कि ब्रह्मा बाबा ने की ब्रह्मा से संपूर्ण ब्रह्मा बनने तक, ब्रह्मा से संपूर्ण फरिश्ता, संपूर्ण एंजल अवस्था प्राप्त करने तक। गीता में 18 अध्याय है, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, महाभारत में 18 सेनाएं थी, 11 इधर से और 7 उधर से, रामायण का युद्ध 18 दिन तक चला, ब्रह्मा के जीवन में भी 18 अध्याय है। वो अध्याय बचपन से है, हम उस बचपन की आज चर्चा नहीं करेंगे, हम आज चर्चा करेंगे और साथ साथ अनुभव भी कि कैसे ब्रह्मा ब्रह्मा बना। सबसे पहले तो एक नजर उस समय की ओर, समाज की क्या गति थी, समाज की क्या दिशा थी, वो समय जिस समय भगवान इस धरा पर आए, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारत पर था, उसमें भी 3 व्यक्तियों का मुख्य रूप से, कार्ल मार्क्स अपनी कम्युनिस्ट फिलॉसफी को लेकर आया था जिसको बहुत जल्दी सारा विश्व स्वीकार कर रहा था, नास्तिकवाद, और वहीं पर बहुत सारे विज्ञान की खोजें हो रही थी जो ये बता रही थी कि बाइबल में जो बातें लिखी है झूठी है। इसीलिए फ्रेडरिच नीत्शे ने घोषणा कर दी थी, गॉड इज डेड, मैन इज नाउ फ्री। सारे विश्व में ये वाक्य ऐसे फैल गया था कि भगवान मर चुका है, मैन इज नाउ फ्री। ये जो बॉन्डेजेस है रिलीजन के, धर्म के, सुपरस्टिशन के, अंधश्रद्धा के, रूढ़िवादिता के, इन सब से सबको मुक्त करना है। सबसे पहला व्यक्ति कार्ल मार्क्स, दूसरा चार्ल्स डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिस थियरी ने कहा कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है उसके जो पूर्वज है वो कौन थे? प्राणी थे, बंदर थे। कहां वो वेदों के वाक्य कि जो वेद कह रहे थे भारत में, उपनिषद का ऋषि चट्टान पर खड़े रहकर चिल्लाता है, शृण्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्राः, आये धामिनी दिव्यानि तस्तु, वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम्, आदित्य वर्णं तमसा परस्तात्। हे मनुष्य आत्माओं सुनो, शृण्वन्ति विश्वे, हे विश्व की आत्माएं, अमृतस्य पुत्राः, ई आर चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टेलिटी, तुम सभी कौन हो? देव पुत्र हो, देवों की संतान हो, देवताएं तुम्हारे पूर्वज है, तुम वही देवता हो। आदित्य वर्णम, जिसका वेदों में गायन है, तमसा परस्तात्, तम को, तमस को, तिमिर को, अंधकार को भगाने वाले, तुम वह ज्ञान स्वरूप देवता हो। ये वेदों की घोषणा, भारत के शास्त्रों की घोषणा, और कहां तो चार्ल्स डार्विन की थियरी कहती है कि पूर्वज कौन थे? तीसरा व्यक्ति सिगमंड फ्रायड, फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, जिसने कहा कि काम बेकार मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, यदि इसे दबाओगे तो विक्षिप्तता होगी, और ये प्रकट करना ही जीवन है। कहां तो पवित्रता का संदेश, और कहां ये कि इस फिलॉसफी के कारण काम विकार को सारे विश्व में स्वीकृति मिली कि इसे दबाना नहीं है, इसे प्रकट करो। इन तीन व्यक्तियों का प्रभाव संसार में था, और उसी समय पर लेखराज, दादा लेखराज का जन्म और आगे का जीवन, और बाद में भगवान की उनके जीवन में प्रवेश था।